Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada, we have gathered together to inaugurate this new coming temple in the great and historical city of Aurangabad.
Aurangabad jaise aitihasik shahar mein aaj hum yahan ikattha hue hain Srila Prabhupada ki or se यहाँ एक नए मंदिर के भूमि पूजन और निर्माण के हेतु
एवरी एंडेवर दैट वी मेक इन लाइफ शुड बी प्रीसीडेड विद अ कॉल फॉर ब्लेसिंग्स.
हम अपने जीवन में कोई भी प्रयास क्यों न करें पर उसकी शुरुआत हमेशा आशीर्वादों के लिए ललायित होके होनी चाहिए.
इट इज द लॉर्ड्स ब्लेसिंग्स एंड दोज कमिंग थ्रू दोज हु लव द लॉर्ड दैट मेक एनीथिंग इन दिस क्रिएशन ऑस्पिशियस एंड मीनिंगफुल.
इस विश्व में कोई भी चीज तभी शुद्ध पुण्यवान होगी जब उस चीज के ऊपर या उस कार्य के ऊपर भगवान के आशीर्वाद होंगे और जो भगवान को प्रिय है उनके आशीर्वाद होंगे.
प्रकृते क्रियमानानि गुणाय कर्मणि सर्वश अहंकार. The Gita describes how bewildered people think themselves the doers of their activities.
गीता में वर्णन आता है कैसे मूर्ख व्यक्ति खुद को कर्ता समझता है.
But all the ingredients that we have to even live are blessings coming from Krishna.
तो कोई चीज करने के लिए क्या पर बल्कि जिंदा रहने के लिए भी जो चीजें हमें जरूरी है वो केवल भगवान के आशीर्वाद के रूप में ही हमें प्राप्त हो रही है.
The ceremony we just performed of placing Anantashesha under the ground before the beginning of the construction of temple is an expression of this principle.
तो यही तत्व हमने अभी एक कार्य के रूप में आपके सामने किया है. वो क्या है कि हमने अनंतशेष जी को भूमि में रखा है.
Anantashesha is an expansion of Krishna, the Supreme Lord.
Anantashesh ji, Bhagwan Shri Krishna, Param Purushottam Bhagwan ke hi ek vistar swaroop hai.
By his power, the earth is floating in its orbit.
Anantashesh ji ki kripa se, prithvi antariksh mein tair rahi hai.
By his power, the sun is in its particular location.
उनकी ही शक्ति से सूर्य अपने विशेष स्थान पे स्थित है.
Without the earth to support us, what could we build?
अगर पृथ्वी को कोई आधार नहीं होता तो हम कहां रहते?
Without the grace of God, what could we do?
और ऐसे ही भगवान की कृपा के बिना हम क्या करेंगे?
So we are recognizing that it is Krishna's grace that is the foundation that will sustain, that will build and sustain this beautiful temple that's to be.
तो हम आज सबके सामने ये स्वीकार कर रहे हैं कि जब भगवान की कृपा होगी तो वो इस मंदिर की सच्ची नींव होगी.
That consciousness of our dependence, our subordination to the Supreme is the basis of knowledge.
और ये जो विचारधारा है कि हम जो भी कर पाएंगे वो केवल भगवान के आशीर्वाद के ऊपर ही कर पाएंगे यही सच्चे ज्ञान का प्रतीक है.
Everyone from the insignificant ant to the greatest of the demigods have some power to control.
एक कोई शक्तिहीन चीटी ले लो या कोई एक बड़ा देवता ले लो, दोनों ही और उनके बीच में जो भी है वो सारे भगवान की शक्ति पर ही निर्भर है.
In this sense, every living being is an Ishvara.
हम देखते हैं कि हम सभी एक रूप से ईश्वर है.
But Krishna is Param Ishvara. He is the supreme controller of all controllers.
और भगवान परम ईश्वर है, वो सारे नियंत्रकों के नियंत्रक है.
नित्यो नित्यानाम चैतनस चैतनानाम एको बाहुनाम यो बिदधाति कामा. That there is one supreme eternal and there are many, many, many other subordinate eternals who are always dependent on that one supreme.
तो इस श्लोक में ऐसा आता है कि हम सारे जीव नित्य हैं, लेकिन सारे नित्य जीवों में एक ऐसा मुख्य जीव है जो भी नित्य है, लेकिन हम सब उस जीव की कृपा के ऊपर निर्भर है.
People are very inclined toward being independent.
हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं स्वतंत्र बन जाऊं.
But no one is independent in this material nature. By the power of time, there are threefold miseries, adhyatmaka, adhidaivaka, adhibhautaka, and ultimately, we are not independent of them.
इस भौतिक प्रकृति में हम सही में देखेंगे तो हालांकि हम चाहते हैं हम स्वतंत्र बने, लेकिन हम में से एक भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है. काल के प्रभाव से तीन गुण हम पे बहुत तेजी से पकड़ में रखे हैं हमको.
But when we learn to totally depend upon Bhagavan, then we become independent of all of the temporary limiting factors of material existence.
तो स्वतंत्र होते होते अगर हमने ऐसा विचार किया कि स्वतंत्र नहीं होना है बल्कि भगवान के ऊपर हमको निर्भर होना है, तब जाके हम काल के प्रभाव से और तीन गुणों के प्रभाव से सही में स्वतंत्र हो पाएंगे.
So to establish this principle at the very beginning of the construction of the temple, we have offered our love and our worship to Ananta Shesha, who is so mercifully taking the lowest position beneath the ground just so that we could have a temple.
और यही तत्व प्रदर्शित करने के लिए भगवान स्वयं अनंत शेष जी एक बहुत ही न्यूनतम भाव लेके जमीन के नीचे पूरे मंदिर का भार स्वीकार करने के लिए यहां आज विराजमान है.
This is the glory of seva or unconditional loving service.
ये है प्रामाणिक निस्वार्थ सेवा का महत्व.
Why is it that Krishna is bhaktavatsal? He is conquered by the love of his devotee.
ऐसा क्यों कहा जाता है भला कि भगवान भक्तवत्सल है, अपने भक्तों को बहुत ही प्रिय रूप से देखते हैं.
Because all of existence, the entire spiritual existence and the entire material cosmos is ultimately existing for the purpose of loving relationships.
क्योंकि सारा संसार, आध्यात्मिक संसार और भौतिक संसार केवल एक चीज के लिए है, प्रेममय संबंध.
And to love means to serve.
और प्रेम करना मतलब सेवा करना.
How is it that the absolute truth, the controller of all controllers, is eager to take a position under the ground, under our feet, to hold up our temple?
ये एक विचार करने योग्य चीज है कि परम पुरुषोत्तम भगवान ऐसा भाव लिए हैं कि हम जब चलेंगे तो हमारे चरणों के नीचे वो सेवा करने के भाव से विराजमान है.
To exemplify this great message, that there is no greater power, there is no greater wealth, there is no greater joy than in serving.
ये एक बात हमको बताना चाहते हैं भगवान, इसी बात के ऊपर जोर देना चाहते हैं कि अगर सेवा करने का मौका मिले तो उससे बड़ा धन और उससे बड़ी संपत्ति कोई भी नहीं है.
During the Ratha Yatra, King Prataparudra, being a great king with many armies, did not impress the Lord.
रथ यात्रा के समय ओडिशा में महाराज प्रताप रुद्र थे तो उनके पास बहुत धन दौलत हाथी घोड़े सारे थे लेकिन उससे भगवान को कोई विशेष उसमें कोई महत्व नहीं था भगवान को.
When he publicly swept the street with a sincere desire to serve and please all the devotees, the Lord blessed him.
पर उनको भगवान का आशीर्वाद तभी प्राप्त हुआ जब उन्होंने सारे भक्तों के समक्ष हाथ में झाड़ू लेके सड़क का साफ सफाई किया.
In the life of Sripad Ramanujacharya, he was taking a group of his devotees to Tirupati.
तो श्रीपाद रामानुजाचार्य जी के जीवन में भी एक ऐसी कथा आती है कि भक्तों को लेके एक समय वो तिरुपति जा रहे थे.
They came to one village and he had two disciples. One was an extremely wealthy man.
चलते चलते एक गांव में पहुंचे और उनके दो प्रमुख शिष्य थे. उसमें से एक शिष्य जो थे वो बहुत ही धनवान थे.
Ramanuja remained on the outskirts of town and sent two of his assistants, go tell him that we're coming to his home to spend the night.
तो उस गांव में जो धनवान उनके शिष्य थे उनको मिलने के पूर्व रामानुजाचार्य जी गांव के बाहर ही रुक गए, शहर के बाहर ही रुक गए और उन्होंने दो शिष्यों को भेजा उस धनवान शिष्य के प्रति ये संदेश भेज के कि रामानुजाचार्य कुछ ही समय में आपके घर पे आएंगे.
The man was so excited. He was so honored and thrilled that my Gurudev is coming. He immediately started telling all of his servants and maidservants and everyone, start preparing.
वो शिष्य ये बात सुन के इतने खुश हो गए अपने सारे नौकरों को दासियों को उन्होंने सेवा में लगा दिया. बोले चलो तैयारी करो अभी हमारे गुरु आने वाले हैं.
So the brahmacharis came back and reported to Ramanujacharya that he's very excited that you're coming. He's making all elaborate preparations.
तो वो जो दो शिष्य हैं वो जो संदेश लेके गए थे फिर वापस आ गए रामानुजाचार्य के पास और बोले अरे हम जब गए और हमने संदेश दिया तो क्या तैयारी शुरू कर दी, बहुत ही तैयारी चल रही है उधर अभी.
रामानुजाचार्य asked, what did he do for you?
रामानुजाचार्य जी ने एक छोटा सा सवाल पूछा उन दो संदेश वाहकों को.
Did he give you a sitting place or water or prasad?
वो सब ठीक है, पहले आप ये बताइए कि जब आप संदेश लेके गए थे तो आपके साथ क्या हुआ, आपको पानी मिला, कोई प्रसाद मिला, बैठने के लिए कोई स्थान मिला कि नहीं.
Said he was so busy preparing for your coming that he didn't give us anything.
उन्होंने जवाब दिया आप आने की खुशी में तैयारी करने के लिए वे इतने खुश हो गए, इतने उत्साही हो गए, हमारे तरफ तो थोड़ा सा उनका दुर्लक्ष हो गया.
रामानुज said, there's a simple man, also my disciple, living on the other part of town. Go and tell him I'm coming.
रामानुजाचार्य ने बताया, ठीक है कोई बात नहीं. इसी शहर में एक दूसरा भी शिष्य है हमारा जो इतना धनवान नहीं है, साधा सरल आदमी है. आप उनको जाके बोलिए कि हम उनके घर पे आएंगे.
He said, oh, he's coming and you are his servants. Please sit down and take water and take prasad and is there anything else we can do for you?
और जब ये दो संदेश लेके उस व्यक्ति के पास गए जो निर्धन था, इतना खुश हो गया, बोले अच्छा गुरु महाराज आएंगे पर आप भी आए हैं, चलिए आप बैठिए, आपका कोई स्वागत करता हूं, आप थोड़ा जल पान लीजिए.
They reported to Ramanujacharya and he and all of his entourage went to spend the night at this simple man's house.
और जब ये संदेश रामानुजाचार्य जी के पास पहुंचा तो उन्होंने ये तय किया कि हम उस धनवान व्यक्ति के पास नहीं जाएंगे, हम इस व्यक्ति के पास जाएंगे।
Meanwhile, the other person had made all these wonderful preparations and was waiting all night long, and Ramanuja never came.
और गांव के उस तरफ उस धनवान व्यक्ति के घर में इतनी सारी तैयारियां की थी, इतना सारा भोग बनाया था, बहुत सारे व्यंजन बनाए थे, और वो पूरी रात जागता हुआ राह देखता रह गया।
The next morning he came running to that house. He found out where his guru was.
अगली सुबह ढूंढता वो व्यक्ति उस निर्धन व्यक्ति के घर में पहुंचा और खोज रहा था कि मेरे गुरु महाराज कहां है।
He said he fell at the feet of Ramanujacharya weeping. He said, "What have I done that has displeased you so much that you would not come to my home?"
वो व्यक्ति इतना दुखी था, रोते रोते रामानुजाचार्य जी के चरणों में गिर पड़ा, बोला, महाराज हमसे क्या गलती हो गई, हमसे क्या अपराध हो गया, कृपया कुछ तो बताइए हमको।
रामानुजाचार्य said, "If you love me, you must love my devotees."
रामानुजाचार्य जी ने एक उत्तर दिया, अगर आप हमसे प्रेम करते हैं तो हमारे शिष्यों से भी प्रेम कीजिए।
Serving them pleases me more than if you serve me.
अगर आप मेरे शिष्यों की, मेरे भक्तों की सेवा करेंगे, उससे मुझे मेरी स्वयं की निजी सेवा से ज्यादा आनंद मिलेगा।
कृष्ण tells in Adi Purana, "Mad bhakta puja pyatika, to serve my devotee is more dear than serving me directly."
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आदि पुराण में बताते हैं, मेरी पूजा से ज्यादा लाभदायक है मेरे भक्तों की पूजा।
When Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, my guru's guru, was traveling once, people, many scholars, many people of all different categories were coming to have his darshan.
तो महाराज जी के परम गुरु, गुरु के गुरु श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब एक बार भ्रमण कर रहे थे, या फिर बहुत बार जब भ्रमण करते, तो बहुत सारे अलग अलग स्तर के, सामाजिक स्तर के लोग उनको मिलने आते।
Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur would ask the person, "Are you a devotee of Krishna?"
तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसे जब नए नए लोग उनको मिलने आते तो उनको सवाल पूछते, क्या आप भगवान कृष्ण के भक्त हो?
If they said, "Oh yes, I am devotee of Krishna."
और वो कभी कभी खुश होके बोलते, हाँ हम तो भगवान कृष्ण के ही भक्त हैं।
He'd say, "Very good, but I'm very busy today, so please, I must excuse myself."
और ऐसा अगर वो जवाब सुनते तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते, बहुत अच्छी बात है, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए, लेकिन आज हम बहुत ही व्यस्त हैं, हम आपसे ज्यादा विचार विमर्श नहीं कर पाएंगे।
But if a person would say, "I am a devotee of Krishna's devotees."
लेकिन कभी कभी कोई एकाध व्यक्ति ऐसा कह देता, हम भगवान कृष्ण के भक्त नहीं है, हम भगवान कृष्ण के भक्तों के भक्त के भक्त हैं।
And my Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur would say, "Then I have all the time in my life for you."
तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती जवाब देते, तो हम पूरे जीवन भर आपके साथ चर्चा करने के लिए तैयार हैं।
So Ramanujacharya taught this man a very good lesson. It's not a matter of whether you're poor or whether you're rich. It's not a matter of whether you're famous or infamous. The question is, spirit bhakti is about the spirit of being servant of the servant of the servant.
तो रामानुजाचार्य ने भी उसके पहले वाली जो कथा थी उसमें यही एक तत्व बताया है। इसको कोई महत्व नहीं है कि आप धनवान है या निर्धन है, आप कोई भी हो, लेकिन आप भगवान के दासों के दासों के दास होने चाहिए।
Ramanujacharya said, "In your enthusiasm to serve me, these devotees, they walked such a long distance to your house. They were hungry, they were thirsty, they were tired. You did nothing for them."
Ramanujacharya ne ji bhi unhone us dhanwan vyakti ko yahi bataya. Unhone bola, "Aap humko swagat karne ke liye bahut taiyari kiye, lekin ye jo hamare do shishya aapke paas sandesh leke aaye the, वो इतने भूखे प्यासे थे, इतनी देर चल के आपके घर पे आए, उनके स्वागत के लिए तो आपने कोई भी व्यवस्था नहीं की."
He said, I have learned my lesson, and I have learned from my God brother here. He may not have so much, but I learned to him, from him, what bhakti really means.
उस दिन उस धनवान व्यक्ति की आंखें खुल गई. वो बोला, आज हम सबक सीख गए. इस हमारे गुरु भाई के पास कोई पैसा हो ना हो, पर उसके पास सेवा भाव का धन है.
Ramanujacharya said, very good. On my way back from Tirupati, I will stay at your house.
और ऐसा सुनते ही रामानुजाचार्य जी ने खुश होके बहुत आनंद पूर्वक ऐसी बात कही, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम अभी तिरुपति जा रहे हैं, जब आएंगे तो आपके घर पे आएंगे.
And when he returned, he stayed at this man's house and there was a good festival.
और सही में जब लौट रहे थे तो रामानुजाचार्य जी अपने सारे भक्तों के साथ उसी धनवान शिष्य के घर पे ठहरे और एक बहुत बड़ा उत्सव हुआ.
Because he had learned this principle that bhakti means to be the servant of the servant of the servant.
क्योंकि वो धनवान शिष्य सही सबक जो सीखने योग्य है वो सीख गया था. वो है भगवान के दासों के दासों के दास बनना है हमको.
श्री चैतन्य महाप्रभु, when he would see his devotees on the bank of the Ganga washing clothes, he would take the clothes and wash them for them.
कभी कभी श्री चैतन्य महाप्रभु बंगाल में जो थे वो कभी कभी गंगा घाट पे चलते चलते देखते कि हमारे कोई भक्त है जो अपना कपड़ा धो रहे हैं, तो श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान होके भी खुद आके अपने भक्तों के कपड़े धोने में मदद करते.
When he would see them carrying something heavy, he would take it and carry it all the way home for them.
कभी कभी कोई व्यक्ति अगर कोई भारी चीज लेके जा रहा है तो श्री चैतन्य महाप्रभु वो चीज छीन लेते और अपने कंधे पे रख के पूरी यात्रा अपने कंधे पे रख के वो भार चल पड़ते.
Although he is Lakshminath, the husband of the goddess of fortune, the absolute truth, the supreme lord, still he wanted to teach by his example.
श्री चैतन्य महाप्रभु लक्ष्मीनाथ है, लक्ष्मी जी के पति है, परंतु अपने खुद के व्यवहार से वो हम सबको एक सबक सिखाना चाहते हैं.
To be the servant of the servant of the servant.
कि हम दासों के दासों के दास बनना चाहिए.
And that is the purpose of these temples.
और यही उद्देश्य है हमारे संस्था के सारे मंदिरों का.
The great acharyas of the history of India, they constructed beautiful temples as spiritual educational places.
हमारे भारत के इतिहास में जो भी आचार्य रहे हैं सारों ने बड़े बड़े मंदिर खड़े किए हैं, पर उसके पीछे उद्देश्य था वैदिक और सांस्कृतिक शिक्षण.
श्रील प्रभुपाद, he said, actually, for our own spiritual lives, we don't need temples. We could chant Hare Krishna under a tree and attain perfection.
श्रील प्रभुपाद जी कहते कि हमारी खुद की आध्यात्मिक प्रगति के लिए हमको मंदिरों की जरूरत नहीं है. हम तो किसी वृक्ष के नीचे बैठ के हरे कृष्ण जप करेंगे और परम सिद्धि प्राप्त करेंगे.
But he said, but how many people will come to this tree?
पर अगर हम ऐसा करेंगे तो इस विश्व के जो लोग हैं ऐसे कितने लोग हमारे पास आएंगे हरे कृष्ण जप करने के लिए.
But if we have a wonderful temple, many people will come.
पर अगर हमारे पास कोई एक बहुत ही सुंदर आकर्षक मंदिर होगा तो सारे लोग हमारे पास आएंगे और बोलेंगे कि हमको हरे कृष्ण करने के लिए सिखाइए.
भगवान इज रिजाइडिंग विद इन द टेंपल.
भगवान जो आध्यात्मिक जगत में रहते हैं वो मंदिर में रहते हैं.
बट हाउ मेनी पीपल रियली न्यू नो हु भगवान इज एंड हाउ टू प्लीज हिम.
वो तो भगवान मंदिर में रहते हैं, पर इस विश्व के कितने लोगों को पता है भगवान कौन है, भगवान से हमारा नाता क्या है.
The real purpose of the temple is to give people the opportunity to associate with genuine devotees.
इसीलिए हम कह रहे हैं कि कोई भी मंदिर का सही मकसद क्या है, कि साधारण जनता को भगवान के सच्चे भक्तों से मिलने के लिए एक व्यवस्था है.
Who can teach by their words and teach by their example.
और ये जो भक्त रहेंगे मंदिर में उनसे क्या अपेक्षा है, कि वो अपने कार्यों से और अपने शब्दों से और अपने खुद के निजी व्यवहार से जो भी आए उनको कुछ शिक्षा प्रदान करें.
of what it truly means to love Krishna by being the servant of the servant of the servant.
भगवान का दास बनना, भगवान के भक्तों का दास बनना क्या है? ये चीज वो अपने खुद के व्यवहार से सिखाएंगे.
So the greatest responsibility we have is not just building the physical structure, but building the sangam, the purity of the association we have with each other, and through that association we could give Krishna to the world.
तो हमारा जो उत्तरदायित्व है वो केवल ये नहीं है कि एक बड़ा आलीशान आकर्षक मंदिर बनाए, पर हम एक ऐसा संघ बनाए जो सारे लोगों को आकर्षित करेगा प्रेम और सेवा के आधार पे.
A temple, Prabhupada said, is like a hospital.
प्रभुपाद जी कहते थे कि एक मंदिर एक अगर दृष्टिकोण से देखेंगे तो एक अस्पताल है.
A hospital that can cure people from the disease of ignorance.
एक ऐसा अस्पताल जो अविद्या के रोग को ठीक करेगा.
That have the symptoms of envy, lust, greed, arrogance.
और ये जो अविद्या का रोग है उसके क्या लक्षण है? द्वेष, काम वासना, क्रोधित होना इत्यादि.
Anger, illusion,
मोह और गलत विचार होना, कोई भ्रम में रहना इत्यादि.
The medicine is the association of devotees.
और इस रोग के लिए सही दवाई क्या है? सच्चे भक्तों का संग.
That association of devotees inspires us with faith to take the supreme medicine of the holy name of Krishna.
जब हम ऐसे भक्तों का संग करेंगे तब हमको बहुत सारी प्रेरणा मिलती है असली दवाई लेने की. असली दवाई क्या है? हरि नाम.
Just like a hospital, you could have a wonderful building with all facilities, but it's only as good as the doctors and nurses who are within the hospital.
हम बाहर देखते हैं कि कोई भी अस्पताल होगा तो अस्पताल का महत्व क्या है? ऐसा नहीं कि केवल एक बिल्डिंग होनी चाहिए पर उसमें अच्छे डॉक्टर हो, अच्छे नर्स हो. उसी प्रकार सच्चा मंदिर वो है जो केवल दिखने में सुंदर नहीं है पर उसके अंदर जो भक्त रहते हैं वो अच्छे हैं.
So many times people come to our Bhaktivedanta hospital and they tell me, I didn't feel like I was in a hospital, I felt like I was in a temple.
तो बंबई में हमारा एक भक्ति वेदांत हॉस्पिटल है, वहां बहुत लोग आते हैं और कभी कभी मुझे जब मिलते हैं तो बोलते हैं, हम जब यहाँ उपचार पा रहे थे तो हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हम कोई अस्पताल में हैं, हमको ऐसा लगा कि हम कोई एक मंदिर में रह रहे हैं.
And sometimes I say, that's very nice. But my hope is when people come to our temples, they will say, I don't feel like I'm in a temple, I feel like I'm in a hospital.
तो महाराज एक व्यंग्य कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि तो हम भी ऐसा जवाब देते हैं तो जैसे आपको अस्पताल में रह के ऐसा लगा कि आप मंदिर में रहते हैं, वैसे हमारी इच्छा है कि जब लोग मंदिर में आएंगे तो बोलेंगे कि हमको ऐसा लगा कि हम अस्पताल में हैं.
Because that is the purpose of our temples, to cure the disease in the heart and allow and revive our original spiritual health.
क्योंकि मंदिर का सही उद्देश्य यही है कि जब कोई रोगी व्यक्ति आता है तो उसका भव रोग, उसको जो ये भव रोग हुआ है उसका निवारण हो जाए.
The soul is satchit ananda, eternal, full of knowledge, full of bliss.
कोई भी जीवात्मा है शाश्वत है, ज्ञानमय है और आनंदमय है.
The nature of the soul is prema pumartha mahan, the highest goal of life is to awaken that love for Krishna that is within us.
जो जीव है उसको अगर परम सिद्धि प्राप्त करनी है तो परम सिद्धि यही है कि अपने अंदर जो भगवत प्रेम है उसको जागृत करना.
हरम विजायते श्री कृष्ण संकीर्तनम, that's the greatest benediction to all humanity is Krishna's holy name.
पूरे विश्व के लोगों के लिए कोई भी स्तर का हो, कोई भी जगह हो, सबसे बहुत अच्छी दवाई और सबसे अच्छा आशीर्वाद क्या है? हरि नाम।
This chanting of Krishna's names is the greatest blessing within this Kali Yuga. Kalero dosa nide rajan asti eka mahan guna. It is the supreme benediction. Simply by chanting Krishna's name, we can awaken that love for Krishna within our hearts.
भगवान का परम आशीर्वाद हम सब पे ये है कि हमारे लिए उन्होंने हरि नाम दिया है और जब हम हरि नाम लेंगे तो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं.
That is the perfection of liberation.
और ये मुक्ति की पराकाष्ठा है.
And our temples are places where we invite the whole world to come to accept this most wonderful blessing in the form of the medicine of the holy name.
और हमारे मंदिर में हम लोगों को इसी के लिए निमंत्रण दे रहे हैं कि कृपया आइए और ये जो एक अद्भुत दवाई है हरि नाम की उसको आप स्वीकार कीजिए.
I am so deeply grateful to all of you for coming together for this very historical project of building a temple in Aurangabad.
मैं सही रूप से अपने अंतकरण से आप सबका आभारी हूं कि आप सारे मिलजुल के एक साथ आके औरंगाबाद शहर में इस मंदिर के निर्माण के लिए एकत्रित हुए हैं.
Very special gratitude to Rohini Priya Prabhu, who came here as a little brahmachari, hardly knowing anyone, and little by little began to connect by giving the blessings of bhakti to more and more people.
और मैं खास तौर से रोहिणी प्रिया प्रभु का आभारी हूं कि एक समय पे जब वो यहां आए थे तो यहां किसी भी को नहीं जानते थे, कोई व्यक्ति को नहीं जानते थे, लेकिन धीरे धीरे नियमित रूप से आके उन्होंने भगवत भक्ति का प्रचार करके आज इतने सारे लोगों को यहां एकत्रित किया है.
Today I am seeing many thousands and thousands of people coming together.
और आज यहां मैं देख रहा हूं कि यहां हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हैं.
It is a beautiful blessing and a great miracle.
ये एक अद्भुत आशीर्वाद है और बहुत ही आश्चर्यजनक चीज है.
I have no proper words to express how happy, how grateful I am.
मेरे पास अपना आनंद और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं.
Srila Prabhupada, our acharyas and Lord Krishna are certainly smiling upon each and every one of you.
Srila Prabhupada ji, हमारे पूर्व आचार्य और श्री श्री राधा गोपीनाथ बहुत ही निश्चित रूप से आप सबके तरफ देख के बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं.
It is my sincerest prayer that each of you remain very humble, very united, very eager to serve each other and serve all living beings on behalf of Krishna.
और हमारी आप सबसे एक प्रार्थना है कि आप सारे मिलजुल के रहिए, साथ में मिलके सेवा कीजिए, एक दूसरे की भी सेवा कीजिए और अन्य जो लोग हैं उनकी भी सेवा कीजिए.
It is my great prayer that we will be together again in the very near future to install the Lord in his beautiful new temple.
और हमारी और एक प्रार्थना है कि हम बहुत ही जल्दी जब इस मंदिर का निर्माण होगा तो भगवान को यहां स्वागत करने के लिए फिर एकत्रित होंगे.
But the process is each and every one of us has to take the responsibility to install the Lord in the temple of our own hearts.
पर ऐसा करने में और एक हमारी जिम्मेदारी है, वो है जैसे मंदिर में हम भगवान का स्वागत करेंगे और भगवान को स्थापना करेंगे, वैसे हम सब भक्त अपने अपने हृदय में भी भगवान की स्थापना करनी चाहिए.
Just as we need to work Just as we need to serve together to build this temple, we need to help each other to serve the Lord within the temple of the heart.
और जैसे इस भव्य मंदिर के निर्माण के लिए हम सबका एकत्रित होना, मिलजुल के रहना अनिवार्य है, वैसे ही अगर अपने हृदय में भी हमको भगवान की स्थापना करनी है तो उसके लिए भी एक दूसरे से मिलजुल के रहना अनिवार्य है.
I thank you, each of you, personally. I thank you with all my heart.
यहाँ जो भी व्यक्ति उपस्थित है, हर व्यक्ति का निजी रूप से, एक एक व्यक्ति का मैं स्वयं बहुत बहुत आभारी हूँ.
हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण. थैंक यू वेरी मच महाराज. तो यहाँ पर पूज्य राधानाथ, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के प्रवचन के पश्चात स्टेज प्रोग्राम होगा. अभी तुरंत यहाँ पर कीर्तन शुरू होगा. कीर्तन के पश्चात यहाँ पर स्टेज प्रोग्राम होने वाला है. कई मान्यवरों को हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं. मुंबई के राधा गोपीनाथ मंदिर के ब्रह्मचारी हिजरेस गौरांग प्रभु को हम यहाँ पर स्टेज पर आमंत्रित करते हैं. तो अभी गौरांग प्रभु यहाँ पर स्टेज पर उपस्थित हो जाएंगे, जिसके बाद यहाँ पर स्टेज प्रोग्राम होगा और गौरांग प्रभु का एक प्रवचन भी यहाँ पर होगा. हरे कृष्ण.
नमः विष्णु पदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमः विष्णु पदाय.
कृपया सब लोग बैठ जाइए. मैं गौरांग प्रभु को स्टेज पर आमंत्रित करता हूं और उनके पश्चात डॉक्टर सुशील भारुका, राजन नाडकर्णी सर, नवीन बगाड़िया, राधेश्याम जी अग्रवाल, बरुड़ गांव के उपसरपंच दांडे रविंद्र करवंदे, सीताराम जी अग्रवाल, नितिन बगड़िया, मनीष अग्रवाल, नितिन बगड़िया, ओम प्रकाश बगड़िया, नितिन बगड़िया, विनोद बगड़िया, रमेश नागपाल जी, सोमनाथ साखरे, माजी मंत्री हरिभाऊ बागड़े, दीपक झुंझुनवाला, जगन्नाथ काले, डॉक्टर मनोहर अग्रवाल और प्रशांत गांधी जी से मैं निवेदन करता हूँ कि वो कृपया स्टेज पर आ
जाए. निर्विशेष शून्यवादी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री
अद्वैत
गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण तन्या.
सब लोग बैठे रहिए.
नित्यानंद श्री अद्वैत हरे कृष्ण.
मैं गौरांग प्रभु से निवेदन करता हूँ कि वो कृपया डॉक्टर सुशील भारुका जी को
कृष्ण कृष्ण
हार अर्पण करें.
हरे हरे राम.
मैं श्रीमान राजन नाडकर्णी सर को गौरांग प्रभु हार अर्पण करेंगे.
हरे
कुमार कृष्ण प्रभु से मैं निवेदन करता हूं कि सभी मान्यवरों को यहां पर पुष्पहार अर्पण करें. प्रशांत गांधी सर, डॉक्टर मनोहर अग्रवाल जी, जगन्नाथ जी काले, दीपक झुंझुनवाला जी, माजीमंत्री हरिभाऊ बागड़े जी, सोमनाथ साखरे, रमेश नागपाल, विनोद बगड़िया जी, ओम प्रकाश बगड़िया, नवीन बगड़िया जी, नितिन बगड़िया, मनीष अग्रवाल, नितिन बगड़िया,
हरे कृष्णा,
रविंद्र करवंदे, सीताराम जी अग्रवाल, राघवेंद्र बगड़िया जी, कृपया स्टेज पर आ जाइए।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
मैं इस गौरांग प्रभु से निवेदन करता हूं कि वो यहां पर कुछ वचन कहें।
हरे कृष्णा। तो आज हम लोगों का परम सौभाग्य है कि औरंगाबाद शहर में कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, जो कि इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, जिनके पूरे विश्व भर में 800 के ऊपर केंद्र हैं, और आज हम लोगों का परम सौभाग्य है कि आप ही के शहर औरंगाबाद में श्री अनंत शेष की स्थापना होकर ये संकल्प हम सभी ने मिलकर किया है कि निकट भविष्य में यहाँ पर एक विशाल भव्य और बड़ा ही सुरम्य मंदिर राधा कृष्ण का तैयार होगा। हरे कृष्ण। तो श्रीपाद राधानाथ महाराज जी ने अपने आशीर्वचनों से हम सभी को इस आगामी मंदिर के विषय में सूचित किया है कि भक्तों के हृदय में कैसी आस्था, कैसी श्रद्धा होनी चाहिए जिसके माध्यम से वो भगवान को यहाँ पर स्वागत कर सकें। आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि किसी भी व्यक्ति के हृदय में जो भगवान के प्रति आस्था और श्रद्धा इतनी तीव्र होती है कि बाह्य कितने भी विकट परिस्थितियां हो उसके ऊपर वो विजय प्राप्त करने की शक्ति रखता है। उदाहरण के लिए जगन्नाथपुरी में आप लोग मंदिर देखे होंगे, जगन्नाथ जी का मंदिर बड़ा ही प्राचीन मंदिर है और हजारों वर्ष पुराना है, लेकिन आप में से कई लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि उस मंदिर पर कई बार आक्रमण हुए और बीच में कई ऐसे दौर आए जब लगभग 100-100 वर्षों तक जगन्नाथ भगवान मंदिर के अंदर से और किसी स्थान पर लेके चले गए और वो संपूर्ण मंदिर बिना विग्रह के था। वहां पर कोई सेवा पूजा नहीं होती थी क्योंकि भगवान के वहां विग्रह विद्यमान नहीं थे, क्योंकि कुछ ऐतिहासिक आपातकालीन परिस्थितियां आ गई थी। अर्थात जगन्नाथ पुरी के और आसपास के जगह के लोग के कई पीढ़ियां जगन्नाथ के दर्शन नहीं कर पाए। तो ऐसी परिस्थिति में कोई विचार करेगा कि हो सकता है मंदिर ही समाप्त हो जाए, लेकिन वास्तविक श्रद्धा, वास्तविक आस्था भक्तों के हृदय में होती है और उस आस्था और श्रद्धा के कारण भक्तों ने सामूहिक रूप से प्रयास करके फिर जगन्नाथ भगवान, बलदेव भगवान और सुभद्रा और सुदर्शन भगवान के विग्रहों को स्थापित करके वहां पर जगन्नाथ की सेवा पूजा आरंभ रखी है जो आज तक चल रही है। जगन्नाथपुरी में प्रतिवर्ष जगन्नाथ रथ यात्रा होती है। अंग्रेज लोग भारत में आए, भारत के अलग अलग पाश्चात्य देश की तुलना में कुछ भिन्न रीति रिवाजों को देखकर वो कुछ भ्रमित से हुए, लेकिन भारत का सबसे अधिक भ्रामक प्रसंग उनको लगा वार्षिक जगन्नाथ रथ यात्रा, जिसमें 3 रथों को खींचने के लिए 20-25 लाख लोग अनायास बिना विज्ञापन के उपस्थित हो जाते हैं। अंग्रेज लोगों ने अपने संपूर्ण बुद्धि के प्रयोग से इस उत्सव को समझने का प्रयास किया, लेकिन उनकी बुद्धि चाहे कितना भी प्रयास करें समझ से परी थी। ये पूरी बात उनके समझ से परे थी और कई उन्होंने अलग अलग ग्रंथ लिख दिए कि कैसे ये उत्सव बेकार है, ये है वो है, बहुत प्रयास किया, लेकिन जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव कितना भी विपरीत विज्ञापन होने पर भी समाप्त नहीं हुआ। इसके बदले प्रभुपाद की कृपा से जगन्नाथ रथ यात्रा लंदन में शुरू हो गई। तो इसीलिए भगवान के प्रति जो श्रद्धा है वो भूख प्यास और अन्य मानवीय आवश्यकताओं के समान सबके हृदय में आत्मा जो बैठी है उसकी भूख है, उसकी पुकार है कि हम भगवान से प्रति प्रेम व्यक्त करना चाहते हैं, और उस प्रेम को व्यक्त करने के लिए एक साधन है मंदिर। लोग कहते हैं भगवान सर्वत्र विद्यमान है तो फिर मंदिर की क्या आवश्यकता, लेकिन सभी के अंदर इतनी आस्था श्रद्धा होती नहीं, न कि ज्ञान होता है, तो इसलिए एक साधन तैयार करने होते हैं, एक परिवेश तैयार करना होता है, तब जाकर लोग उसका लाभ लेते हैं। एक कथा मैं सुनाता हूं, एक नास्तिक थे जो भगवान में विश्वास नहीं रखते थे, और उनके घर के निकट एक वयोवृद्ध महिला रहती थी जिनका भगवान के ऊपर बहुत प्रेम था, बहुत श्रद्धा थी, और वो दिन रात राधा कृष्ण का नाम लेती थी, जय गोविंद जय गोपाल कहते रहती थी, और ये नास्तिक निरंतर उनका उपहास करते थे कि अरे कौन से भगवान को पुकार रहे हो, कौन गोविंद कौन गोपाल को पुकार रहे हो, वे तो हमको दिखते नहीं, किसको पुकार रहे हो। तो एक दिन की बात है, इस नास्तिक ने विचार किया कि हम इस महिला के भ्रांत धारणाओं को भ्रष्ट करेंगे, तो मार्केट में गए, प्रचुर मात्रा में चावल दाल साग सब्जी सब खरीद के लाए, और बेचारी बूढ़ी जो महिला थी गरीब थी, उसके पास साधन कम थे, तो उनके ही घर के बाहर द्वार के पास ये सब साग सब्जी चावल दाल ला के रख दिया, और दरवाजा के खटखटाकर वो दूर जाकर छुप गए और देखने लगे तमाशा। तो बूढ़ी महिला ने अपना घर खोला, द्वार खोल के बाहर देखा कि पूरे हफ्ते भर का सामग्री आ गया है, इतना वो प्रसन्न हुई, भगवान के प्रति पहले ही उनके हृदय में अनुराग था, तुरंत हाथ जोड़कर दोनों हाथ ऊपर करके कहने लगी जय गोविंद जय गोपाल, आप कितने कृपालु हो कि आपने इतना कुछ साग सब्जी सामग्री भोजन की एक सप्ताह के लिए मेरे लिए भेज दिया, आप कितने कृपालु हो कितने दयालु हो। तुरंत वो नास्तिक पेड़ के पीछे छुपा था बाहर उठ के आया और महिला को देखकर उपहासपूर्ण शब्दों में कहता है आपको क्या लगता है ये सब गोविंद और गोपाल ने भेजा क्या, आपको क्या लगता है भगवान ने भेजा क्या, अरे मैं गया था मार्केट, मैं जाकर मार्केट में ये सब माल खरीद के लाया और इसका बिल मैं भरा हूं, समझे क्या, कहां है तुम्हारे भगवान। तो ये महिला तुरंत हाथ ऊपर उठा के कहती है भगवान हे गोविंद हे गोपाल आप इतने कृपालु हो, न केवल इतना कुछ साग सब्जी माल भेजा लेकिन नास्तिक से बिल भी भरवाया। तो ये हृदय की आस्था की बात है कि एक व्यक्ति को भगवान का हस्ताक्षेप दिखता है और दूसरे व्यक्ति को लगता है कि भगवान कहां है। तो दोनों में समन्वय लाने के लिए एक बिल्डिंग की आवश्यकता है जिसको कहते हैं मंदिर, जहां आस्तिक नास्तिक दोनों आ जाए और संवाद हो विवाद हो, लेकिन अंत में भक्ति का भाव जब हो तब जाकर संपूर्ण समाज परिवर्तित होगा, सबके हृदय में मंदिर स्थापित होगी। इसलिए यहां पर औरंगाबाद शहर में जो ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है दक्कन पूरे क्षेत्र का, यहां जब एक बहुत बड़ा मंदिर होगा तो आसपास के हजारों लाखों लोग यहां भूमि पूजन, जहां पर केवल यहां पर सपाट जमीन है, केवल भूमि पूजन के लिए यहां पर 4000 लोग एकत्रित हो गए हैं, तो सोचिए मंदिर का उद्घाटन होगा तो 4 लाख के ऊपर लोग यहां पर रहेंगे। और मैं विशेष रूप से रोहिणी प्रिया प्रभु को भूरी भूरी धन्यवाद देता हूं कि पिछले 20 साल से वो यहां पर इतना कर्मठ प्रयास करके आ रहे हैं। हर वर्ष यहां पर जन्माष्टमी कार्यक्रम, पूरे महाराष्ट्र का इस्कॉन का सबसे बड़ा जन्माष्टमी प्रोग्राम होता है, जहां पर 50,000 के भी ऊपर लोग आते हैं। तो आशा है कि ऐसे कार्यक्रम और होते रहेंगे और रोहिणी प्रिया प्रभु और सब भक्तों के यहां पर मार्गदर्शन से यहां कृष्ण भक्ति की लहर दिन दूनी रात चौगुनी और बढ़ती चली जाए। इन शब्दों के साथ मैं यहां पर कथा को विराम देता हूं। धन्यवाद।
धन्यवाद गौरंग प्रभु। गौरंग प्रभु के पश्चात मैं इस दिन रोहिणी प्रिया प्रभु से निवेदन करता हूं कि वो कुछ वचन कहें।
ओम अज्ञान तिमिरांध्रस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। श्रीमान गौरांग प्रभु हमारे बहुत प्रिय सखा मित्र हैं, हमारे उपदेशक भी हैं। आज उन्होंने अपने सुंदर वचनों से हमें यह उपदेश दिया है कि एक ऐतिहासिक मंदिर यहां बने। अच्छे शिष्य वो होते हैं जो उपदेशक के उनके आदेश को हृदय में पकड़ ले, धारण कर लें और उसे पूरा करने में पूरा प्रयास लगा दें। तो अगर आप सब हमारे साथ हैं और बहुत जो यहां पर उपस्थित नहीं है लेकिन भावना में हमारे साथ हैं, अगर हम श्री गौरांग प्रभु के इस उपदेश को पूरा करना चाहते हैं तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि दोनों हाथ आकाश में उठा लें और जोर से हरि बोल कहें। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी सहानुभूति के लिए। हमसे पूछा गया कि थोड़ा हम संक्षिप्त में बताएं किस प्रकार से इस्कॉन के कार्य यहां पर शुरू हुए। 1996 में शिला अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, जो कि इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, उनके इस जगत में आविर्भाव होने का 100वां सालगिरह था, शताब्दी। तो उस अवसर पर यह विचार किया गया कि क्यों ना अलग अलग जो महाराष्ट्र के प्रांत हैं, जिले हैं, वहां पर हम बीजारोपण करें कृष्ण भक्ति का, विशेष करके जो इस्कॉन संप्रदाय है उस संप्रदाय के द्वारा। तो निश्चित रूप से बाह्य दृष्टिकोण से तो हमारे जैसे बहुत सारे हमारे आश्रम के जो गुरु बंधु हैं, इस्कॉन बंबई इस्कॉन चौपाटी से बाहर निकले और हम भी इस क्षेत्र में हम भी प्रवेश कर गए, यहां पर आए। तो बाह्य दृष्टिकोण से ऐसा था कि हम शायद अकेले थे और ये बहुत ही मायूस करने के बराबर वाले ये विचार हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में हमारे साथ प्राचीन काल के सारे आचार्यों की जो संप्रदाय है वो साथ आई थी। तो कहां से हम अकेले हुए जब इतना जोर हमारे साथ है,
इतने वैष्णवों का संघ हमारे साथ है, जब प्रभु और प्रभु की सारी सेना साथ हो, तो एक समुद्र पर कोई ब्रिज बनाना कोई साधारण कार्य सिद्ध हो जाता है, कोई कठिन कार्य नहीं है। उसमें एक चींटी एक गिलहरी भी अपना योगदान दे सकती है। तो आप सब यहां पर पहले से उपस्थित हैं, आपके हृदय में प्रभु के प्रति जो प्रेरणा है वो पहले से ही थी। हम एक गिलहरी के समान आकर यहां पर थोड़ा सा योगदान दे दिए, सारा श्रेय आपका है। सोलह वर्ष 18 वर्ष बीत गए हैं, एक अकेला व्यक्ति जिसके पास गुरु उपदेश है और अपने बंधुओं का आशीर्वाद है, कैसे कर पाएगा ये, जब तक कि बहुत ही प्रेमी भगवत प्रेमी लोग साथ में ना जुड़ जाएं। आज औरंगाबाद के कितने श्रेष्ठ, जिनके श्रेष्ठ जो पुरुष हैं, पुरुष गण हैं, जो कि वास्तव में भगवान के प्रति और भक्ति के प्रति प्रेम रखते हैं, वो हमारे इस कौन संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। और ये हमारी शक्ति है, यहां पर इस कौन औरंगाबाद की शक्ति, यहां के जो भगवत प्रेमी समाज है वो हमारी शक्ति है, और हम उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं। एक छोटी सी कथा हम भी सुनाते हैं। गौरांग प्रभु की इच्छा से दो कथा सुनाएंगे। जब अग्रज कुछ कर जाए तो अनुज को उससे थोड़ा आगे करना चाहिए, अग्रज को प्रसन्नता होती है। एक बार सम्राट अकबर फकीराबाद आए। आपने फकीराबाद का नाम सुना है? वैसे तो उस क्षेत्र को मथुरा मंडल माना जाता है, लेकिन सम्राट अकबर ने सोचा यहां पर बहुत फकीर हैं, इसलिए उन्होंने नामकरण कर दिया फकीराबाद। तो उन्होंने कहा हम फकीराबाद जा रहे हैं। पहुंच गए फकीराबाद। बिहारी जी का मंदिर बहुत प्राचीन है मथुरा में, वृंदावन में। उन्होंने कहा चलो बिहारी जी का दर्शन करते हैं। गए बिहारी जी का दर्शन करने, फिर संत महात्माओं का दर्शन करने गए। पता चला हरिदास जी वहां पर हैं। हरिदास जी से भेंट करने गए। हरिदास जी ने उनसे उन्हें दर्शन दिया, उनसे वार्तालाप की। फिर सम्राट जी ने हरिदास जी के स्वभाव को देखा, उनके चरित्र को देखा, उससे इतने प्रभावित हुए, उन्होंने कहा मैं आपको आपकी सेवा में कुछ करना चाहता हूं। हरिदास जी ने कहा आप मेरी सेवा में क्या करेंगे, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं, आप जो कहें, प्रभु की सेवा में कुछ करना चाहता हूं, इस वृंदावन धाम के लिए कुछ करना चाहता हूं, जितना धन लगेगा हम देने के लिए तैयार हैं। हरिदास जी ने कहा अच्छा आप ब्रजभूमि की सेवा करना चाहते हैं, ठीक है जाइए पहले जमुना जी में स्नान करके आइए। लेकिन जमुना जी में स्नान करेंगे तो प्रथा यह है कि आंख बंद मत कीजिएगा जब डुबकी लगाएंगे, आंख खुले रखिए। सम्राट जी गए जमुना जी में स्नान करने, और जैसे ही सर जल के नीचे उन्होंने रखा अपना, डुबकी लगाया, तो अपने नेत्र जो हैं वो खुले ही रखे, और तब उन्हें जमुना के तट का दर्शन हुआ। इतना सुंदर यह चिंतामणि धाम का दर्शन हुआ कि अकबर ने सोचा मैं क्या धन दूंगा, यहां से अगर एक कण मिल जाए तो सारा विश्व खरीद सकता हूं मैं। तो वास्तव में हम खाली एक कण दे सकते हैं, लेकिन वह कण हमारा संपूर्ण विश्व की संपत्ति हो सकती है। और यह हमारा अहोभाग्य होगा कि हम ऐसा कुछ योगदान कर सके। और ये दूसरी कथा हम सुनाते हैं आपको। आज से 8 या 10 वर्ष पूर्व कोल्हापुर में श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन इस्कॉन ने किया, और जब भगवान जगन्नाथ जी बलभद्र जी और सुभद्रा माता के साथ सुदर्शन जी के साथ अपने रथ पर आरूढ़ होकर गमन कर रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं सारे कोल्हापुर के निवासियों को प्रथम बार इस शताब्दी में, तो एक बुढ़िया बिल्कुल दुबली पतली सी बहुत वयस्कर वो किसी प्रकार से थोड़ा भिमलाते हुए आती है, जगन्नाथ जी का दर्शन करती है और एक भक्त को पकड़ उसके धोती को पकड़कर खींच रही है, कह रही मुझे पास जाना है, मुझे पास जाना है। बाह्य स्वरूप देखकर तो हर कोई व्यक्ति सोचता है कहां इसे पास भेजूंगा, कहीं कुचली गई कहीं दब गई परेशान हो जाएंगे हम। ने कहा नहीं मां आप कहीं मत जाना ना, मुझे पास जाना। कुछ था उस बुढ़िया में जिसको जिससे वो भक्त प्रभावित हो गए। उन्होंने कहा ठीक है आप मेरे पीछे आइए। हाथ पकड़कर वो जगन्नाथ जी के सामने गई और जब वहां पर पहुंची तो अपने साड़ी में से एक पोटली निकाली, प्लास्टिक का एक पोटली, उसमें बहुत सारे सिक्के थे और सब जगन्नाथ जी को अर्पण किया। और फिर उन्होंने कहा पूरे जीवन भर मैं ये धन इकट्ठा कर रही हूं, जितना हो सके उतना मैं इकट्ठा कर रही हूं, और मेरी यही इच्छा थी कि एक दिन प्रभु घर आएंगे और मैं समर्पण कर पाऊंगी सब कुछ। आज प्रभु आ गए, मैंने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया। उसी प्रकार से अपने विग्रह रूप में, अपने निवास स्थान मंदिर के रूप में प्रभु यहां पर आ रहे हैं, क्योंकि हम में से बहुत लोग इकट्ठा किए हुए हैं अपना धन जो समर्पित करना चाहते हैं प्रभु को। तो यह अवसर हमारे पास उपलब्ध है। यहाँ के हमारे जितने समर्थक हैं, आयोजक हैं, सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो हमारी हौसला हमारे जो इरादे हैं उसे बहुत बनाए रखे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। और एक छोटी सी बात खाली कहकर हम समाप्त करेंगे कि कहीं समय के इंतजार में समय को के गति को ना समझते हुए ऐसा ना हो जाए कि हमारे हाथ से एक सुनहरा अवसर निकल जाए। यह एक सत्य कथा है। अमेरिका में बहुत प्रसिद्ध एक यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है हार्वर्ड, कुछ लोगों ने सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध है महाविद्यालय, विश्व महाविद्यालय। एक बार एक दंपत्ति, उम्र शायद 60 वर्ष के आसपास की होगी, वो वहां के डायरेक्टर के पास आ गए। उन्होंने कहा हमें एक योगदान करना है, धन योगदान, हमें कुछ डोनेशन देना है आपकी संस्था को, इसे किसी भी रूप में आप प्रयोग कीजिए ज्ञान का वर्धापन हो उसके लिए। दिखने में बहुत सीधे थे, सरल थे, मतलब बाह्य दृष्टिकोण से लगता नहीं था कि बहुत धन होगा इनके पास। डायरेक्टर ने कहा मेरे पास अभी समय नहीं है, बाद में हम सोचेंगे, कभी और आइएगा, इतना कहकर उन्हें निकाल दिया। ये बहुत दुखी लोग थे। उन्होंने कहा कि देखिए हमारे एकलौती संतान थी, अब 20 वर्ष की आयु होगी, उसकी मृत्यु हो गई, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है, उसके स्मरण में हम ये योगदान करना चाहते हैं। तो डायरेक्टर ने कहा बहुत अच्छी बात है, कभी जब समय होगा तो आपको बुलाएंगे, अभी हमारे पास ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है। उन्हें वापस भेज दिया। तो उन्हें सोचा क्या करेंगे, तो उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया और उस ट्रस्ट का प्रयोग करके स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी बनाया, जो कि आज विश्व में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसा ही प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है। हार्वर्ड के हाथ से मौका निकल गया, लेकिन विश्व के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी आज उपलब्ध है। उसी प्रकार से कहीं ऐसा ना हो कि हमारे हाथ से सुनहरा अवसर निकल जाए, परंतु भगवान का मंदिर तो बनना ही है। तो हम आप सबसे प्रार्थना करते हैं कि अपने अपने इच्छानुसार जैसा भी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, एक जैसे भी आपकी आपके पास शक्ति हो, उस रूप में हमारे साथ सहयोगी रहें और भगवान के इस सुंदर मंदिर के स्थापन में आप भी भाग लें। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। धन्यवाद रोहिणी प्रिया प्रभु। रोहिणी प्रिया प्रभु के पश्चात हमारे माननीयों में माजी मंत्री हरिभाऊ बागड़े जी, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वह अपना मनोगत व्यक्त करें।
आदरणीय व्यासपीठ आणि उपस्थित बंधू भगिनींनो, आज या ठिकाणी इस्कॉन या संस्थेच्या वतीने जे शेष नारायणचं मंदिर उभं राहणार आहेत आणि त्या मंदिरातून आपल्याला आपली संस्कृती आपली परंपरा ही जोपासायचं किंवा वाढीला लावायचं, पुढच्या पिढीवर चांगले संस्कार घडवायचे यासाठी या मंदिराचा निश्चितपणे उपयोग होणार आहे। इस्कॉन संस्था ही जगभरात नावाजलेली आहे, परंतु रशिया सारख्या त्या देशामध्ये एका जिल्ह्यामध्ये एका कोर्टाने भगवद्गीतेवर बंदी घातली आणि ती बंदी या इस्कॉन संस्थेने हायकोर्टात जाऊन उठवली आणि आता त्या तिच्यावर तिथे कुठली बंदी राहिलेली नाही। म्हणजे जगभरामध्ये भगवद्गीता, श्रीकृष्ण, रामायण, महाभारत हे जगामध्ये पसरवण्याचं काम इस्कॉन कंपनी करते। ती केवळ धार्मिक कामच करते असं नाही, तर या देशामध्ये असंख्य ठिकाणी जे मंदिर बांधून त्यांनी समाजाला जो उपदेश सुरू ठेवलाय त्यामध्ये एक बेंगलोरचं एक मंदिर मोठं आहे। त्या बेंगलोरचं मंदिर मी पाहिलंय आणि इस्कॉन या संस्थेने इथल्या जिल्हा परिषदेची शाळा असो, खासगी संस्थांच्या शाळा असो, माझी एक संस्था आहे तिची एक शाळा आहे शहरामध्ये, त्याच्यात खिचडी देण्याचं काम ते करतात। लोकांना साधं काम वाटेल पण आम्ही वर्षानुवर्षे देत होतो खिचडी, पोरं खात नव्हते, अनेक शाळांतून फेकून देत होते, तक्रारी करत होते, पण इस्कॉन कंपनी इस्कॉन संस्थेने आमच्या N5 धर्मवीर विद्यालयामध्ये ते खिचडीचा साठी त्यांचे इस्कॉनचे लोक माझ्याकडे आले, संस्था चालकाकडे आले, म्हणजे आम्ही देऊ इच्छितो। आणि म्हणलं ताबडतोब द्या, ताबडतोब द्या, कारण इस्कॉन या संस्थेची मला थोडीफार माहिती जी होती काही वाचून मी जे काही अनुभवलं होतं तर त्या आधारे मी त्यांना सांगितलं। मी आता जेव्हा शाळेत जातो त्यावेळेला कधी कधी पोराला विचारतो खिचडी कशी, तर पालक सांगायला लागले की पूर्वी आमचं पोरग आमचं पाल्य घरून डबा पण न्यायचं पण तिथली खिचडी खात नव्हतं, आता घरचा डबा देणं बंद झालं। तो पालकाला येऊन सांगतो ती पाल्य की इतकी चांगली खिचडी आम्हाला आतापर्यंत घरी सुद्धा मिळत नव्हती। त्याचा परिणाम असं की ज्या भावनेने, ज्या इच्छाशक्तीने, ज्या आत्मीयेने, ज्या प्रेमाने इस्कॉन संस्था या लहान मुलावर या मार्फत जे संस्कार करते, या संस्कारातून खरं म्हणजे या देशाची भावी पिढी निर्माण व्हावी आणि या देशाचं जी काही परंपरा आहे, जी संस्कृती आहे, ही अखंड टिकावी, जगात तिचा मान सन्मान व्हावा, हा या इस्कॉन कंपनी इस्कॉन संस्थेचा हेतू आहे आणि त्याच्याच या लोकांवर संस्कार घडण्याच्या दृष्टीने या मंदिराची निश्चितपणे उपयुक्तता वाढेल। या मंदिरासाठी परिसरातूनही मदत होईल आणि सगळीकडे मदत होऊ शकते. मंदिराला दान देण्याची ही धार्मिक इच्छाशक्ती आहे. आमच्याकडे शाळेला दान मिळत नाही, पण मंदिराला नक्की दान देणारे लोक असतात, आणि किती देतात हे आपण पाहिलं. असंख्य मंदिर आहे की त्यांच्या पैशाची मोजदाद करता येत नाही. आणि आमची संस्कृती सांगते की पूर्वी आमच्याकडे पैसे नसायचे, सोने आम्ही देवाला देतो. आमच्या जगामध्ये सगळ्यात श्रीमंत कोण असेल तर ते आमचे देव आहे. प्रचंड सोनं नाणं पैसा त्यांच्याकडे आहे, कारण आमच्याकडे पैसे नसायचे, लोक सोनं द्यायची परंपरा आहे. आणि सोनं देण्यासाठी ज्याला इच्छा होत नाही, ज्याला पैसा देण्याची इच्छा आहे, आमच्या साधू संतांनी शिकवलं. रामदास स्वामीचं उदाहरण माहित आहे. रामदास स्वामी भिक्षा मागायला जात होते तर काही श्रीमंत लोक भिक्षा वाढत नव्हते. हे साधू जा पुढं, तू चांगला तगडा आहे, तरुण आहे, काम कर आणि तू पैसे कमव. पण त्यांनी रामदास स्वामी एकदा ठरवलं की या श्रीमंताला दान द्यायचं शिकवलं पाहिजे, म्हणून ते एकदा गेले, झोळी पुढे केली, ओम भिक्षा देई म्हणले, त्यांनी दिली नाही. स्वामीजी खाली वाकले, मुठभर माती घेतली, त्या माणसाच्या धनवान माणसाच्या हातात दिली आणि सांगितलं माझ्या झोळीत टाक. तो माणूस म्हणला माती झोळीत टाकली तर पीठही खराब होईल जे तुला थोडंफार मिळालं ते. त्याने होऊ दे खराब, आजच्या दिवस उपाशी राहील, पण तुझ्या हाताला सवय लागावी म्हणून तू एवढी माती तरी झोळीत टाक. आणि म्हणून अशी परंपरा असलेला आपला देश आहे. निश्चित देवधर्माच्या नावाने आपली संस्कृती आपल्याला निश्चित पुढे घेऊन जाईल. एवढंच या प्रसंगी बोलतो आणि माझं बोल संपवतो. धन्यवाद.
हरे कृष्ण. धन्यवाद हरिभाऊ बागड़े सर. हरिभाऊ बागड़े सर के बाद यहाँ पर जगन्नाथ काले सर अपना मनोगत व्यक्त करेंगे.
हरे कृष्णा. सर्वप्रथम मी इस्कॉन ह्या संस्थेला धन्यवाद देईल की त्यांनी वरुड गावी हे मंदिर उभारण्याचं जे कार्य केलं, माझ्या वतीने आमदार डॉक्टर कल्याण काळे साहेबांच्या वतीने मी त्यांचे फार फार धन्यवाद देतो त्यांना की ह्या भागात फुलंब्री मतदारसंघात त्यांनी हे मंदिर उभारण्याचं कार्य सुरू केलेलं आहे. आमच्या वतीने, आमच्या परिवाराच्या वतीने या संस्थेसाठी काम करणारे आपले इथले बगाडिया बंधू, भारुका बंधू, तसेच नाडकर्णी सर, नागपालजी, ह्या सगळ्यांसोबत आमदार साहेब व आमचं कुटुंब नेहमी या मंदिर उभारणीच्या कार्यामध्ये सतत तत्पर राहील. हरिओम.
हरे कृष्णा. हम यहां पर प्रमोद जी राठौड़, भागवत करड़ सर, इनका भी स्वागत करते हैं. मंगरोली सर, उनका भी स्वागत करते हैं. अभी मैं श्रीमान रोहिणी प्रिया प्रभु से निवेदन करता हूं कि वह राजेश भारुका जी, जिनके प्रयत्नों के कारण यह मंदिर बनने जा रहा है, जब भी रोहिणी प्रिया प्रभु ने पिछले रथ यात्रा को उनको बोला कि भारुका जी यहां पर मंदिर होना चाहिए, और राजेश प्रभु ने वो पूरा दिल पे लिया. पिछले एक साल में जगह देखना, ये जगह खरीदना और मंदिर के लिए इसको दान करना, ये इतना सारा प्रोसेस उन्होंने किया. उन्होंने बोला था कि अगला जगन्नाथ रथ यात्रा के पहले ये हो जाएगा. अभी आने वाला जगन्नाथ रथ यात्रा 27 जनवरी को है, उसके पहले ही लैंड रजिस्टर भी हो गया और उसका भूमि पूजन भी हो गया और काम शुरू होने जा रहा है. मैं राजेश भारुका प्रभु से निवेदन करता हूं कि वो स्टेज पर आए और श्रीमान रोहिणी प्रिया प्रभु उनका यहां पर गार्लैंड करके स्वागत करेंगे.
हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल.
साथ ही साथ मैं श्रीमान महामुनि प्रभु को निवेदन करता हूं. श्रीमान महामुनि प्रभु को निवेदन करता हूं कि वह तुरंत स्टेज पर आ जाए। उनको गौरंग प्रभु को निवेदन करता हूं कि उनको फैसिलिटेट करें। रोहिणी प्रिया प्रभु औरंगाबाद आना शुरू हुए तो औरंगाबाद में सबसे पहला व्यक्ति जो भक्त बना वह है महामुनि प्रभु। मंदिर तो खड़ा हो जाएगा लेकिन उसके फाउंडेशन को भूल जाएंगे, लेकिन महामुनि प्रभु और व्रजवल्ली माता जी उनका परिवार यह मंदिर का फाउंडेशन है। मैं गौरंग प्रभु से निवेदन करता हूं कि वो महामुनि प्रभु को यहां पर पुष्पहार डालकर उनका धन्यवाद दें। हरि बोल हरि बोल
हरि बोल हरि बोल।
साथ ही साथ मैं आप सभी को एक कथा बताना चाहता हूं। हरियाणा में एक अग्रोहा धाम है। अग्रोहा धाम में एक ऐसी प्रथा है कि जो भी वहां गांव का व्यक्ति है, जब भी वहां पर कोई आता है तो उसको एक रुपया और एक ईंट दान करता है। और श्रीमान नाडकर्णी सर ने यह मंदिर का एक पंच लाइन बनाया है, ब्रिक बाय ब्रिक। मैंने कहा सर ये मंदिर कैसे बनेगा, बोले ब्रिक बाय ब्रिक, एक ईंट के ऊपर दूसरा ईंट रखकर यह मंदिर बनेगा। और ये हर एक ईंट देने का सबको यहां पर आह्वान हम कर सकते हैं। हर सभी को यह मंदिर में पार्टिसिपेट करने के लिए अलग अलग स्कीम्स बनाई गई हैं। हर कोई अपना एक जो स्क्वायर है खुद मार्क कर सकता है, मिनिमम एक रुपए से लेकर तो मैक्सिमम कितने भी रुपए तक धनराशि में दान देकर, अपना समय देकर, अपना जो भी स्किल है उसको देकर आप यह मंदिर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें कुछ अलग अलग स्कीम इस तरह से हैं। मार्क योर स्क्वायर 2500 रुपए, प्रभुपाद सेवक 51000 रुपए, वैकुंठ सेवक 1,00,000 रुपए, गोलोक सेवक 251,000 रुपए, निकुंज वृंदावन सेवक 5,00,000 रुपए, बलराम सेवक 11,00,000 रुपए, सीताराम जी सेवक 21,00,000 रुपए, लक्ष्मी नारायण सेवक 51,00,000 रुपए और राधा कृष्ण सेवक 1,00,000,000 और उससे ज्यादा। तो मैं सबसे निवेदन करता हूं कि आप जो भी आपकी शक्ति बने आप ये मंदिर में सहभागी हो जाइए। अभी या आने वाले समय में कभी भी आप हमें बुला सकते हैं, हम सेवा के लिए तैयार हैं। अभी मैं माइक सुबुद्ध राय प्रभु को हैंड ओवर करता हूं, वो अगला प्रोग्राम बताएंगे।
श्रीमान प्रमोद राठौर जी यहां पर स्टेज पर आए हैं। मैं सुकुमार कृष्ण प्रभु से निवेदन करता हूं कि उनको पुष्पमाला अर्पण करें। संभाजी अतकर जी और समीर भंडारी इन दोनों को मैं स्टेज पर आमंत्रित करता हूं। श्रीमान संभाजी अतकर और समीर भंडारी जी, श्रीमान भागवत जी कराज सर, इनका स्वागत हमारे भक्त राहुल कोटलवार प्रभु करेंगे। मैं सचिव सुचरण प्रभु से निवेदन करता हूं कि वे संभाजी अतकर जी और समीर भंडारी जी का यहां पर स्वागत करें। मंगरूए सर का यहां पर स्वागत कर दिया जाए। हरे कृष्णा। तो अभी यहां पर 5 मिनट के लिए कीर्तन होगा और सभी मान्यवरों से मैं निवेदन करता हूं कि यहां पर वृक्षारोपण करने के लिए वह स्टेज के दाहिनी ओर से चलते हुए वृक्षारोपण स्थली पर चले जाए और सभी भक्त यहां पर उपस्थित रहे। हम सबका सबको धन्यवाद देना चाहते हैं और सभी भक्तों के लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई है। तो सभी भक्त अभी महाप्रसाद के लिए निकल सकते हैं। हरिनाम कीर्तन के पश्चात। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण हरे
हरे कृष्ण। एक बहुत महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट सबके लिए है। यहाँ पर हजारों लोग एकत्र हुए हैं। इसी प्रकार से हजारों लोगों को इसी जनवरी महीने में एकत्र आने का और एक अवसर है। आने वाले 27 जनवरी के दिन, जिस दिन रविवार है, इस्कॉन औरंगाबाद की ओर से जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया गया है। आने वाले 27 जनवरी के दिन, जिस दिन रविवार है, क्रांति चौक इस स्थान से रथ यात्रा का आरंभ होगा। रथ यात्रा जालना रोड से होते हुए क्रांति चौक, अमरप्रीत होटल, मुंडा नाका, आकाशवाणी सिग्नल, सेवन हिल से होते हुए हाईकोर्ट के सामने से जाकर यंत्री में संत मीरा हाई स्कूल के बाजू में जो गरबा ग्राउंड है, उस गरबा ग्राउंड पर संपूर्ण होगी और तत्पश्चात शाम में वहां पर पेंडोल कार्यक्रम होगा। तो 27 जनवरी रविवार क्रांति चौक से रथ यात्रा का आरंभ होगा। तो हम सभी को 27 जनवरी को ठीक सुबह 11 बजे रथ यात्रा के लिए क्रांति चौक पर आमंत्रित करते हैं। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा